क्या विलक्षण उनका रूप है, बाण और परशु को आयुध बनाए हुए धनुष उनके टंगा हुआ है, मृगचर्म उन्होंने पहन रखा है और सूर्य के समान देदीप्यमान कांति वाले हैं और जटाएं हैं वो मानो सूर्य के प्रकाश वो किरणें हो, इस प्रकार से वे सुशोभित हो रहे थे। और वे 17 अक्षौहिणी सेना की जो बारिशमती नगरी की रक्षा करने वाले थे उससे जाकर अकेले ही जूझ पड़े और सारी सेना का उन्होंने संहार कर दिया। कितने के हाथ काट दिए, किसने के गले काट दिए, किन्हीं के पैर काट दिए, जिस प्रकार से कोई पेड़ को काटने वाले फरसों से वे पेड़ काटते हैं, ऐसे उन्होंने मनुष्यों को काटना चालू किया। काटते काटते राजा भी उनके बीच में थे, राजा का भी सिर काट दिया। जब राजा का सिर काट दिया और वे कामधेनु को लेकर आए अपने आश्रम में तो पिताजी से सारी बात कह दी कि महाराज हमने सारी सेना का संहार कर दिया है, राजा को भी मार दिया है, ये कामधेनु लेकर आए हैं। उन्होंने देखा कि शायद पिता हमारी बहुत प्रशंसा करेंगे, लेकिन पिताजी तो बेचारे ब्राह्मण थे, बड़े दयालु। उन्होंने कहा कि राम राम महाबाहु भवान पापम अकारसीत। अरे गाय ले गया तो ले गया, चलो अपने को आंख बंद कर लेनी चाहिए थी, उधर से भूल जाना चाहिए था, तुमने बड़ा भारी पाप कर लिया महाबाहु, राजा को तुमने मार दिया। राजा में तो बेटा सारे देवता रहा करते हैं और हम लोग ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण संसार में बड़ा क्यों होता है, वो अपने क्षमाशील स्वभाव के कारण से बड़ा होता है। ब्राह्मण अपने को बड़ा नहीं मानता इस कारण से वो बड़ा होता है, क्षमया अर्हणतांगत है, हमारी क्षमा करने की ये बहुत पुरातनी प्राक्तनी परंपरा है, उस परंपरा के अंतर्गत हमको रहना चाहिए था बेटा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। आपको मालूम है परशुराम कि ये क्षमा इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि पारमेष्ठ्यम अगाध पदम, मनुष्य एक क्षमा रूपी शस्त्र से ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है, कोई अनुष्ठान की जरूरत नहीं, कोई यज्ञ आदि की जरूरत नहीं, एक क्षमाशील स्वभाव होना चाहिए, उतने मात्र से मनुष्य है वो दिव्य ऊंचे लोकों में चला जा सकता है। परशुराम क्षमा से लक्ष्मी की शोभा होती है, क्षमा से ब्रह्माणी की शोभा है, क्षमा से सूर्य की कांति का प्रकाश निकलता है, क्षमा से भगवान संतुष्ट होते हैं। भगवान को प्रसन्न करना हो तो किसी अपराधी को क्षमा कर देनी चाहिए, भीतर में उसके अपराध को याद भी नहीं करना चाहिए, तुमने बहुत बड़ी भारी गलती की है। राज्ञी और मूर्धा भी शिक्तस्य, एक तो राजा का वध और वो भी वो राजा है स्वयंभू राजा नहीं जिसका अभिषेक किया है, ब्राह्मणों ने जिसको राजा बनाया है और उसी का तुमने वध कर दिया, तो भाई हमारे शब्दों में तो वधो ब्रह्म वदात गुरु, ब्राह्मण हत्या से भी बड़ी हत्या तुमको लग गई, अच्छा नहीं किया तुमने, जाओ तीर्थ सेवन करके आओ, हरदम भगवान का चिंतन करो, तभी तुम्हारा पाप दूर होगा तो नहीं होगा। पिता की आज्ञा प्राप्त करके परशुराम जी अपनी कुटिया से चल पड़े, एक आश्रम से दूसरे आश्रम घूमते घामते तीर्थ यात्राएं करते एक साल उन्होंने लगा दी और इस प्रकार साल भर के बाद वे वापिस आए। एक बार की बात है, संध्या का समय था, जमदग्नि ने अपने पत्नी से कहा कि भाई नदी से जल ले आओ, संध्या करनी है। तो वे गंगा जी के तट पर गई और घड़ा भर करके और जो ही रवाना होने लगी, इतने में ही चित्ररथ गंधर्वराज चित्ररथ वहां स्नान करने के लिए आया अप्सराओं के साथ। अब वो गंधर्व तो यूं ही सुंदर और उनमें गंधर्वराज और कितना सुंदर होगा, ध्यान देना इन कथाओं से मर्म की बात ऐसी है, अपने आप ही उससे अपने को अर्थ निकाल लेना चाहिए। वह अप्सराओं के साथ में उसमें स्नान करने लगा गंधर्वराज चित्ररथ, इधर वो रेणुका घड़ा भर करके जो ही उसको उठाने लगी तो चित्ररथ के शरीर को देखा, शरीर को देखा तो उसके मन में इतनी बात आई कि ओहो इन लोगों के कितने सुंदर शरीर होते हैं, इतनी मन में आई थी। इस कारण से वहां संध्या में थोड़ा विलंब हो गया और देखा देखने में विलंब हो गया, तो वो फिर बाद में अपने पतिदेव के पास में जल लेकर पहुंची। पतिदेव थे बड़े ज्ञानी, कालात्ययम तम विलोक्य, उस समय में मुनि ने देखा कि हमारी पत्नी को इतने समय में यहां आ जाना चाहिए था, बीच का समय कहां गया। ध्यान लगा के देखा कि ओहो स्त्री के मन में अपने पति के अलावा किसी और में ये बुद्धि चला जाना कि ये सुंदर है ये इसका दोष है। पति को बहुत क्रोध आया, जमदग्नि जी को क्रोध आया क्रोध आते उन्होंने देखा कि हमारी स्त्री के द्वारा बड़ा भारी अत्याचार हुआ है, इसको और किसी को सुंदर मानना ही नहीं चाहिए था, कैसे सुंदर मान लिया। तो अपने बेटों से कहा उन्होंने कि हमारे पुत्रों जाओ तुम्हारे माँ का सिर उड़ा दो तुम। बेटों ने कहा कि ये भी कोई बात है, क्यों उड़ावे जी माँ का सिर, कि उन्होंने किसी दूसरे को सुंदर पुरुष को देख लिया, कि ये तो कोई मारने का कारण नहीं है, हम नहीं मारते। ध्यान से सुनना, परशुराम जी पर आक्षेप करते हैं लोग। फिर इतने में परशुराम जी आए, परशुराम जी से कहा पिताजी ने कि बेटा तुम्हारे भाइयों का भी सिर काट दो और तुम्हारे माँ का भी सिर काट दो। परशुराम जी ने फरसा लिया, सारे भाइयों का भी सिर काट दिया और माँ का भी सिर काट दिया। काटने के बाद फिर बड़े खुश हुए जमदग्नि। जमदग्नि ने कहा कि बेटा कोई वरदान मांग लो, कि महाराज वरदान ये है कि माँ भी जीवित हो जाए और बेटे भी जीवित हो जाए, और इनको ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने इनका सिर काटा है। जमदग्नि की आंखें फटी रह गई कि बेटा तुमने तो बड़ा विचित्र काम किया है, तो वरदान दे दो आप। तो कहा अच्छा तथास्तु। उनका तथास्तु कहना हुआ कि सब के सब जीवित हो गए, ऐसा लगे कि हम सोकर के उठे। अब लोग कहते हैं कि परशुराम जी ने माँ का सिर क्यों काटा। परशुराम जी को मालूम है कि जिस पिता की आज्ञा से मैं सिर काट रहा हूं, वे पिता ऐसी शक्ति रखते हैं कि कटे हुए सिर को वापस जोड़ भी सकते हैं, ऐसा उनके विश्वास है, इसलिए पिता की आज्ञा मानी उन्होंने। अब वे परशुराम जी महाराज जो है पिता को इस प्रकार से प्रसन्न कर लिए। पितुर विद्वांस तपोवीर्यम रामस चक्रे सुरिद वदम। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसा परशुराम जी के समान हर किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी के पिता में इतनी सामर्थ्य नहीं है जितनी सामर्थ्य जमदग्नि में है, और यदि इतने सामर्थ्य का भरोसा हो तब कोई बात नहीं, पर ऐसा आदेश ऐसा पिता दे भी नहीं सकता है जिसमें इतनी सामर्थ्य न हो, कैसे देगा वो आदेश। आदेश अपनी शक्ति से ही तो देना चाहिए। तो सब जीवित हो गए। इधर सहस्रार्जुन के बेटों को मालूम चला कि इस प्रकार से हमारे पिता का सिर काटा है इस परशुराम जी ने, तो इस परशुराम के बाप का सिर नहीं काटा तो हम भी सहस्रार्जुन के क्या लड़के। तो परशुराम जी गए हुए थे जंगल में, और पीछे से वो मैं उसके आश्रम में आ गए सहस्रार्जुन के बेटा, और वो बेचारे उस समय में अपना कोई संध्या का कार्य कर रहे थे जमदग्नि जी, और उसी समय आकर जमदग्नि का सिर काट दिया। सिर काट करके वे अपनी राजधानी में ले गए कि इनका सिर नहीं मिलना चाहिए परशुराम के पिता का। अब वो माँ जोर जोर से चिल्लाई परशुराम जी की, माँ अरे बेटा परशुराम परशुराम जल्दी आओ बचाओ, परशुराम बेटा जल्दी आओ, ऐसे चार पांच बार नाम लिया। तो परशुराम जी जंगल में थे, दौड़े दौड़े आए, पूछे माँ क्या बात है। बात क्या है कि तुम्हारे पिता का देखो धड़ तो पड़ा है और सिर काट करके सहस्रार्जुन के लड़के ले गए, अच्छी बात है, पिताजी के शरीर को सुरक्षित रखना। इतना क्रोध आया, फरसा लेकर के गए और वहां जाकर के उन सब का उन्होंने वध कर दिया। माहिष्मती नगरी में जाकर के अपने पिता के मारने वालों को तो पूरा कर ही दिया, और भी जितने पक्षपाती थे सब का संहार करने के बाद अपने पिता का जो सिर था वो सिर लेकर के आए। और उस समय में इतना क्रोध आया उनको इन क्षत्रियों पर कि 21 बार उन्होंने युद्ध करके क्षत्रियों का नाश कर दिया। फिर पिताजी के शरीर से उस शरीर को जोड़ा, और जोड़ करके संज्ञपन विधि से उन्होंने उनमें चेतना ला करके और सप्तर्षियों के ऋषि मंडल में उनको भेज दिया। ऋषि नाम मंडले सोभूत सप्तमो राम पूजित है। सप्तर्षियों में ले जाकर अपने पिताजी को रख दिया कि अब कोई इनको नहीं मारेगा। इधर पृथ्वी जब उनके हाथ में आ गई परशुराम जी के, तब उन्होंने होता उद्गाता अध्वर्यु और ब्रह्मा को ये पृथ्वी चार विभाग से विभक्त करके दे दी। इस प्रकार से ये परशुराम जी महाराज का चरित्र है। आगामी मन्वंतर में स्वयं परशुराम जी सप्तर्षियों में जाकर बैठेंगे। ये तो परशुराम जी का चरित्र हुआ, सत्यवती के बेटों का चरित्र हुआ। अब जो सत्यवती की जो माँ थी अर्थात सत्यवती का भाई कौन पैदा हुए, विश्वामित्र जी पैदा हुए। विश्वामित्र जी थे, इनके 100 लड़का थे। अब इधर सुनश्चेप को और ले आए तो 101 हो गए। 101 में बीच में मधुछंद नाम के लड़का थे, वो बीच के थे। तो जब सुनश्चेप को लेकर आए तो उन बेटों से कहा कि देखो भाई सुनश्चेप को मैं लेकर के आया, तुमने तो यहां जन्म लिया है और ये मेरे वहां बाहर से लाया हुआ है, तुम अपने समान इसको भाई मानो। तो बेटों ने मना कर दिया, हम नहीं मानते। तो जिन बेटों ने मना कर दिया वे बेटे सदा के लिए मर गए, और जिन्होंने हां भर ली वे बेटा जिंदा रह गए। इस प्रकार से ये बड़े श्रेष्ठ विश्वामित्र जी महाराज हुए, क्षत्रिय के यहां जन्म लेकर के और एक ही शरीर से राजर्षि होकर ये ब्रह्मर्षि हुए हैं। बड़ा विचित्र इनका पराक्रम है। तो एवं कौशिक गोत्रम तो विश्वामित्र पृथक विदम प्रवरांतरमापन्नम तद्दिच एवं प्रकल्पितम। इनके अंत में प्रवर नाम के पुत्र हुए थे इस वंश में। अच्छा, अब हम तुमको बताते हैं कि उसी पूर्ववा के सबसे पहले का जो आयु हुआ था, आयु के नहुष हुए, क्षत्रवृद्ध हुए, रजी हुए, रंभ हुए, ये इनके चार संतानें थी और एक पांचवा अनेना हुए। इस प्रकार से इस वंश में बड़े अच्छे अच्छे पुरुष हुए हैं। सौनक जी महाराज भी इसी वंश में हुए हैं, धनवंतरी भी हुए हैं, दिवोदास हुए हैं, आगे जाकर अलर्क आदि ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने इस पृथ्वी का बहुत लंबे समय तक 66,000 बरस तक शासन किया है। इतना लंबा शासन और कौन कर सकता है। अलर्क के संतति हुए, उसे सुनीत हुए, उससे धूम केतु हुए। इस प्रकार से अच्छे अच्छे राजाओं का इसमें वर्णन है। उसके बाद बता रहे हैं कि इसी क्षत्रवृद्ध का जो भाई था रंभ, रंभ के रभस हुआ और रभस के गंभीर हुए, कहते हैं उसके अक्रिय हुए और उसके क्षेत्र में ब्राह्मण भी पैदा हुए हैं। इस प्रकार से रजी के पंच शतान्यासन, कहते हैं 500 बेटा थे। देव एक बार क्या हुआ कि रजी के 500 बेटा थे। रजी का एक बार देवताओं ने अपने साथ में पक्ष में लेकर के असुरों के साथ युद्ध किया। युद्ध के अंदर रजी के कारण से देवताओं की विजय हो गई। विजय हो गई तो रजी ने कहा कि तुम्हारा शासन तुम ले हो। देवताओं ने कहा कि नहीं, तुम्हारे पास ही रहने दो, अभी असुर बलवान है, तुम्हारे कारण से हमारे पर आक्रमण नहीं करेंगे, इसलिए तुम्हारे पास ही शासन रहने दो। तो शासन रजी के हाथ में रहा, लेकिन रजी की मृत्यु के बाद रजी के बेटों ने वो स्वर्ग का शासन इंद्र को दिया नहीं। इंद्र को नहीं दिया तो फिर इंद्र ने उनको मार काट करके उनको मारकर अपना शासन वापस ले लिया। कहने का मतलब है कि पृथ्वी के राजा लोगों ने देवताओं का जो शासन है वो इसी शरीर से संभाला। कैसे विचित्र पराक्रमी राजा लोग हुए हैं। इस प्रकार से ये बातें हुई है। अब हम तुमको नहुष का वंश सुनाते हैं। नहुष के यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति, ये 6 बेटा हुए। यति तो परम ज्ञानी थे, उन्होंने शासन लिया नहीं। और नहुष के जब स्वर्ग में जाना हुआ और स्वर्ग में इंद्राणी के साथ अपराध किया तो उनको सर्प योनि मिल गई, इस कारण से वे तो अब राज्य से च्युत हो गए, तो ययाति राजा हो गए। ययाति ने अपने चारों भाइयों को चारों दिशाएं प्रदान कर दी। ययाति का विवाह वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा के साथ और शुक्राचार्य जी की कन्या देवयानी के साथ हुआ। राजा ने पूछा कि महाराज, वृषपर्वा की कन्या के साथ तो ठीक है, लेकिन एक शुक्राचार्य जी ब्राह्मण है, उनकी कन्या के साथ कैसे विवाह हुआ। कहते हैं देखो, दानवेंद्र वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य जी की कन्या देवयानी, इन दोनों में बहुत प्रेम था। एक बार वे हजारों सखियों के साथ में एक किसी उपवन में गए, बगीचे में गए और वहां वे स्नान कर रहे थे। इतने में ही पार्वती जी सहित शंकर भगवान उसी रास्ते से जा रहे थे, तो उन सखियों ने देखा कि ओ शंकर भगवान आ रहे हैं, हम लोग स्नान करें, जल्दी हम कपड़े वगैरह पहन ले। तो वे कपड़ा वपड़ा पहनने लगी तो उस समय में गलती हो गई। शर्मिष्ठा से गलती यह हुई, पता था नहीं उसको, उसने तत्काल देवयानी के कपड़े पहन लिए। अब वो ब्राह्मणी देवयानी बड़ी कुपित हो गई, कहने लगा देखो देखो, ये क्षत्रिय तो ब्राह्मणों के द्वारपाल है और ये हमारा कपड़ा पहनने लग गए। सुनी वह हविरथ भरे, अब बहुत कठोर बात कही हो कि देखो हविष्य अन्न है, उसको कुत्तों को खाने को मिल जाए, कितने आश्चर्य की बात है। ब्राह्मण ने तपस्या के द्वारा संसार की रक्षा की है और ये क्षत्रिय लोग इतना अपमान करने लगे। इस प्रकार से वो बहुत कुछ कहने लगी। तब शर्मिष्ठा कहने लगी कि क्यों जी देवयानी जी, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करने चली हो कि हमने तपस्या से संसार को बनाया है, ये किया है, हम संसार में सबसे बड़े हैं, लेकिन अपने बाप से पूछ के आओ कि तुम्हारे यहाँ कोई खाने पीने का प्रबंध भी है क्या। टुकड़ा तो हम देते हैं और गालियां तुम दोगे हमको, हम तुम्हारी गालियां सुनने के लिए थोड़ा ही है। इस प्रकार से उसको बड़ा क्रोध आया और एक पास में कुआं था उस कुएं में देवयानी को फेंक दिया और स्वयं अपने महल में आ गई। संयोग की बात थी कि उसी कुएं के पास में ययाति राजा प्यासे होकर आए कि भाई पानी पी ले, में शिकार खेलने के लिए आए थे तो शिकार खेलने के लिए आए, कुआं देखा कि भाई इस कुएं में से जल निकाल ले में। इतने में वहां पहुंचे तो वहां पर एक स्त्री दिखाई दी उनको, कहा भाई हमको बाहर निकालो। तब ययाति ने जैसे तैसे प्रयत्न करके उसका हाथ पकड़ के उसको बाहर निकाला। बाहर निकाला तो उस स्त्री ने कहा, उस देवयानी ने कहा कि देखो तुमने हमारा हाथ पकड़ लिया है, अब उम्र भर हम तुम्हारा ही हाथ पकड़े रहेंगे कि भाई आपका परिचय कि मेरा परिचय, मैं शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी हूं और ऐसे ऐसे शर्मिष्ठा के साथ लड़ाई होगी, उन्होंने मुझे पटक दिया और तुमने हमारा हाथ पकड़ लिया है तो ब्राह्मण के साथ तो मेरा कभी विवाह होगा नहीं क्योंकि मुझे पहले से ही श्राप मिला हुआ है। आपको श्राप कहां से मिला कि मुझे बृहस्पति के बेटा कछ ने श्राप दिया है। आपको श्राप क्यों मिला जी, बृहस्पति तो बहुत बड़े देवताओं के गुरु, बड़े ज्ञानी है, उनका बेटा भी बड़ा ज्ञानी है, आपको श्राप कैसे दे दिया? कि बात यह हुई कि मैं अपने पिताजी के पास में विद्या अध्ययन करता था तो फिर पिताजी ने कहा देखो बेटा संजीवनी विद्या सीखनी हो तो शुक्राचार्य जी के पास जाओ। तो मैं शुक्राचार्य जी के पास गया और संजीवनी विद्या उनसे सीखने लगा। तो शुक्राचार्य जी की कन्या थी देवयानी, कोई और कोई लड़का तो था नहीं, तो उस समय कन्या देवयानी थी। देवयानी ने मेरे से प्रस्ताव रखा कि देखो कच्छ तुम भी ब्राह्मण के लड़के हो, मैं ब्राह्मण की कन्या हूं, तुमको हमारे साथ विवाह कर लेना चाहिए। तो कच्छ ने मना कर दिया कि देखो मैं जिन गुरु जी के पास विद्या अध्ययन कर रहा हूं, आप उनकी पुत्री हो तो मेरे लिए आप बहन के समान आदरणीय हो, मैं आपको स्त्री रूप से स्वीकार नहीं कर सकता। तब देवयानी को बड़ा क्रोध आया, देवयानी कह रही मुझे बड़ा क्रोध आया, मैंने श्राप दे दिया उसको कि जाओ कच्छ, मेरे पिता से जो विद्या सीखी है वो विद्या तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगी। तो कच्छ ने भी मुझे श्राप दे दिया कि जाओ देवयानी, तुमको भी अपने जीवन में कभी ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। तो हमको ब्राह्मण तो अब पति रूप से मिलने वाला नहीं है, इसलिए तुम हमारे पति हो, हम तुमको स्वीकार कर चुके हैं। तो ययाति ने जो उत्तर दिया कि कन्या के स्वीकार करने से पति स्वीकार नहीं होता, कन्या के पिता के कहने से ही ये बात स्वीकार होगी, अभी हम स्वीकार नहीं करते, आपके पिताजी कह देंगे तो हम मान लेंगे, हम स्वीकार कर सकते हैं। कितने आदर्श राजा थे वो, एकांत में जंगल में तुम हमको पति बनाने की बात कह रहे हो, पति बनने की बात कह रहे हो, हम इसे स्वीकार नहीं करते, तुम्हारे पिता कहेंगे तब हम स्वीकार करेंगे। देवयानी अपने पिताजी के पास आई और पिताजी से कहने लगी कि देखो पिताजी ये राजा वृषपर्वा है, इसकी कन्या शर्मिष्ठा ने मेरा इतना अपमान किया कि कुएं में फेंक दिया, और ये और कहने लगे कि तुम टुकड़ा हमारा खाते हो, तुम हमारे जिलाए जीते हो, बहुत हमारा अपमान किया है। शुक्राचार्य जी ने देखा कि ओहो ये इस प्रकार से हम पुरोहिती वृत्ति करते हैं, हम तो करते हैं और हिसाब से, और लोग इसका अर्थ ये लगाते हैं कि भाई ये आजीविका का साधन बना रखा है। अरे ये विद्या आजीविका का साधन थोड़ा ही है, ये विद्या तो एक शास्त्र की परंपरा है, आज्ञा है, इससे लोगों का हित होता है, इसलिए हम ये विद्या करते हैं। और ये राजा लोग कुछ दक्षिणा दे करके ऐसा विचार करते हैं, इतना घमंड करते हैं कि हम इनको जिला रहे, बहुत उनको दुख हुआ और वे उस राजा के राजधानी को छोड़ करके रवाना हो गए। वृषपर्वा को मालूम चला कि शुक्राचार्य जी रवाना हो गए, तब वो दौड़ा दौड़ा आया, उनके चरणों में गिर गया कि महाराज मेरी गलती हो गई, मेरी बेटी की गलती हो गई, आप मुझे क्षमा करो। तो वही परीक्षित ब्राह्मण को और क्या चाहिए, हाथ जोड़ते बेचारा वो क्षमा कर देता है। क्षणार्धमन्यु वे तो आधे क्षण के लिए भले ही क्रोध कर ले, बाकी क्रोध उनके ठहरता नहीं, उन्होंने स्वीकार कर लिया, अच्छी भाई देवयानी कहे वैसा कर लेंगे, हमारी बेटी कहे वैसा कर लेंगे। तो वृषपर्वा ने कहा कि देखो गुरुपुत्री, सारी प्रजा का ध्यान करो, तुम गुरुजी चले जाएंगे तो फिर ये सारी प्रजा धर्म से नष्ट हो जाएगी, इसलिए तुम अपने पिता को मनाओ और यहीं रहने दो। देवयानी ने कहा कि अच्छी बात है, मैं अपने पिता को यहां रख देती हूं, पर एक बात है, मेरा विवाह ययाति के साथ होगा और उसमें शर्मिष्ठा मेरी दासी बनकर के मेरे पास रहेगी, ये शर्त मंजूर है आपको? अब वृषपर्वा कहने लगा कि भाई मेरी पुत्री दासी बनकर, लेकिन प्रजा का हित देखना है, गुरु जी चले जाएंगे नाराज हो जाएंगे तो सारी प्रजा दुखी हो जाएगी। तो कहा अच्छी बात है, मेरी बेटी को मैं मनाऊंगा, वो आपकी दासी होकर के रहेगी। अब ययाति के साथ विवाह हो गया और देवयानी ययाति के साथ चली गई, साथ में दासी बनकर के शर्मिष्ठा गई। शर्मिष्ठा ने, देवयानी ने अपने पति ययाति से कहा कि देखो ये दासी है तो दासी के रूप में रहेगी, मेरे स्थान की बराबरी इसको नहीं मिलेगी। तो ययाति ने कहा ठीक है। थोड़ा दिनों में ययाति के देवयानी से दो बेटा पैदा हुए, यदु और तुर्वसु, और थोड़े ही दिनों में शर्मिष्ठा के तीन बेटा पैदा हुए, द्रुयु, अनु और पुरु। अब शर्मिष्ठा थी, बहुत सुंदर थी, तो राजा से उसके तीन बेटा पैदा हो गए। देवयानी को पता चला कि ये तो हमारी दासी बनकर के आई थी और इसी राजा से इसने पुत्र प्राप्त किए, तो बहुत नाराज हो गई और नाराज होकर के अपने पिताजी के वहां चली गई। पिताजी के वहां जाकर फूट फूट के रोने लगी। तो पिताजी ने कहा कि भाई ये तो तुम्हारे पति ने बुरा किया है, जो बात हुई थी उससे अलग चला है, उसने साफ दे दिया कि जाओ तुम्हारा पति बूढ़ा हो जाए। ययाति बूढ़े हो गए। अब ययाति अपने ससुर जी के पास आए, कहने लगे कि ससुर जी ये क्या कर रहे हो, मैं बूढ़ा हो गया तो अब मेरा शासन भी नहीं चलेगा और आपके, मैं यदि मर गया तो आपकी कन्या भी विधवा हो जाएगी, इसमें आपने कौन सी बड़ी बात निकली, अब हमसे गलती होगी तो आप माफ करो, जैसे तैसे हमको आप हमारी जवानी लौटा दो। देखो ये केवल समय पास करने के लिए कथा नहीं कह रहे, ध्यान देवे कैसा विचित्र विचित्र इनके जीवन में क्रम आया है। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो आपको कोई जवानी दे देगा तो आपके पास जवानी आ जाएगी, इतनी हम छूट देते हैं। ययाति ने कहा मेरे लड़के बहुत अच्छे हैं, हमारा लड़कों पर मुझे बहुत भरोसा है। अब वो गए लड़कों के पास में, सबसे पहले बड़े लड़के के पास गए, यदु था बड़ा लड़का, उसके पास गए और यदु से कहा कि बेटा तुम्हारी जवानी हमको दे दो और हमारा बुढ़ापा तुम ले लो। क्यों पिताजी, जवानी कोई जीवन में बार बार थोड़ा ही मिलती है, एक बार मिलती है वही आपको दे दें, नहीं दे सकते। पिताजी को बहुत बुरा लगा, पिताजी ने कहा जाओ तुमको राजगद्दी नहीं मिलेगी। फिर दूसरा बेटा तुर्वसु था, ये दोनों बेटा देवयानी के, देव यदु ने भी मना कर दिया, तुर्वसु ने भी मना कर दिया। अब शर्मिष्ठा के बेटा थे द्रुयु, उसको कहा तुम के नहीं महाराज, हम भी नहीं देंगे हमारी जवानी। अनु से कहा तुम दे दो कि नहीं देंगे। एक अंत में पुरु बचा, ययाति ने कहा पुरु तुम अपनी जवानी हमको दे दो। ये बात सुनते ही पुरु के आंखों में पानी आ गया कि पिताजी क्या वो कोई बेटा बेटा होता है कि जो पिताजी के मांगने पर कुछ देता है। पिता वही है कि जो नहीं, बेटा वही है कि जो पिताजी के सोचने में बात आई है उनके कहने से पहले ही पूरा कर देवे, वह उत्तम बेटा होता है। और कहने के बाद जो काम करता है वो तो बेचारा मध्यम दर्जे का बेटा है। और अधम वो है कि जो बिना श्रद्धा से काम करता है, और जो पिताजी ने कह दिया और काम नहीं करता है वो पिता का बेटा नहीं है, पिता का मलमूत्र है और कुछ नहीं है। पिता कहे और बेटा मना कर दे वो मलमूत्र के समान त्याज्य है। बहुत प्रसन्न हो गए ययाति। पुरु ने कहा महाराज मेरी जवानी ले लीजिए, जवानी दे दी। और ययाति बूढ़े हो गए, ययाति बूढ़े थे वो जवान हो गए और पुरु है वो बेचारा बूढ़ा हो गया। अब ययाति ने बहुत यज्ञ किए, तरह तरह से अनुष्ठान किए, सारे संसार में एक परमात्मा को भी देखा, इस प्रकार से उन्होंने अपने मन का नियंत्रण करके भगवान की आराधना की, भगवान के लिए यज्ञ किया। जब बहुत सा समय बीत गया तो ययाति ने देवयानी से कहा देखो देवयानी, ये संसार में विषय की आशा कितनी विचित्र है हो, हमको हमारी जवानी से तृप्ति नहीं मिली तो दूसरों से हमने जवानी ली। इससे ये सिद्ध होता है देवयानी कि पृथ्वी के ऊपर जितना धन धान्य है, जितना सोना है, जितने पशु हैं, जितनी स्त्रियां हैं, किसी एक आदमी को भी मिल जाए तो उससे वो संतुष्ट होने वाला नहीं है। सारे के सारे धन से कोई एक आदमी संतुष्ट नहीं हो सकता, तो बताओ थोड़ा सा धन मिलता है उसमें हम लोग संतोष की आशा करते हैं धन से संतुष्ट हो जाएंगे। कामनाओं की निवृत्ति कामनाओं की पूर्ति से नहीं होती है देवयानी। न जातु काम है कामानाम उपभोगे न साम्यति, विषयों की जो इच्छा होती है वो विषय के मिलते रहने से इच्छा नहीं मिटेगी, वह तो और ज्यादा भड़कती रहेगी। यदि शांति चाहते हैं तो हमको हमारे मन से कामना को निकाल देना चाहिए, सब प्राणियों के प्रति मंगल का भाव रखना चाहिए, सबके प्रति समदृष्टि रखनी चाहिए। संसार में मनुष्य सब पर विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन अपने मन में उठने वाली कामना पर विजय प्राप्त करने में उसको बहुत जोर आता है, और जो इस कामना को जीत लेता है वो वास्तव में सारे संसार को जीत लेता है, क्योंकि ये इंद्रियां इतनी बलवान है, ये मन को और बुद्धि को फुला फुसला करके और संसार में घसीटी लेती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा है देवयानी कि मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। माँ हो बेटा हो, माँ हो बहन हो बेटी हो, कोई भी क्यों न हो भाई, इनके प्रति भी जो व्यवहार करना चाहिए बहुत सोच समझ करके यथा योग्य बर्ताव करें, इससे ज्यादा घुलमिल करके न रहे। पता नहीं कब मनुष्य की चित्त की वृत्तियों में क्या बात आ जाए और क्या इसके साथ हो जाए। हजारों वर्षों तक मैंने विषय का सेवन किया है, लेकिन तृष्णा का तो अंत नहीं आया। अब भाई ये जवानी मेरे पास है, जल्दी से जल्दी पुरु को दे देता हूँ, और भाई मैं तो अब भगवान का भजन करूंगा, तुम्हें क्या करना है सो तुम बता दो। तब उन्होंने अपने बेटों को राज्य दे दिया, पुरु को अपनी जवानी दे दी, सारे भूमंडल से अपना मन हटा लिया, वस्तुओं से सबसे मन हटाकर स्त्री से भी मन हटा लिया, और स्त्री से मन हटा करके उन्होंने भगवान वासुदेव का जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका उन्होंने जाप किया और भगवान के अंदर स्थित होकर के उन्होंने अपना शरीर भगवान को ही अर्पित कर दिया। अब मैं आपको पुरुवंश सुनाता हूँ। अब वो पुरु जो राजा बने हैं, कितना विलक्षण वो राजा है। पुरु के जन्मेजय हुए, जन्मेजय के प्रचिनवान हुए, प्रचिनवान के प्रवीर हुए, इनके अंदर बड़े अच्छे अच्छे राजा हुए थे, जिनके अंदर दुष्यंत नाम के एक राजा हुए। दुष्यंत एक बार शिकार खेलने के लिए गए जंगल में, वहां वे कण्व ऋषि के आश्रम में गए। ध्यान से सुनना, वहां आश्रम में उन्होंने बहुत सुंदर स्त्री को देखा। स्त्री को देखते ही दुष्यंत के मन में उस स्त्री के प्रति प्रेम पैदा हो गया और पूछा कि भाई हे कन्ये तुम कौन हो, तुम कण्व की कन्या तो नहीं हो, क्योंकि मेरे जैसा क्षत्रिय कभी भी अधर्म के अंदर पैर रखने वाला नहीं है, मुझे मेरे चित्त वृत्ति पर पूर्ण विश्वास है, तो मैं देख करके मैं मोहित हुआ हूं, तो भाई कुछ न कुछ तुम हमारी हो, हमारी जाति की हो, इस कारण से ये मन में मेरी वृत्ति पैदा हुई है, नहीं तो पुरुवंशियों के मन में कभी अधर्म आ ही नहीं सकता है। सच्ची बताओ तुम्हारा परिचय क्या है? तो उस कन्या का नाम था शकुंतला। उसने कहा कि देखो मैं विश्वामित्र की तो बेटी हूँ और मेनका से पैदा हुई हूँ। विश्वामित्र क्षत्रिय है और मेनका ने मुझे यहीं छोड़ दिया जंगल में, कण्व ऋषि ने मुझे पाला है पोसा है, तो कण्व ऋषि की तो पालिता बेटी हूँ और उसी बेटी में विश्वामित्र की हूँ। और तब उन्होंने गंधर्व विधि से उसे स्वीकार कर लिया और वे उसके पास में रहे, और उसके बाद दुष्यंत दूसरे दिन वहां से रवाना हो गया, अपने महल में चला गया। थोड़े दिनों के बाद उस शकुंतला के लड़का पैदा हुआ, बड़ा विलक्षण वो पराक्रमी, छोटा सा था तो भी सिंहों के मुंह में हाथ दे देता था, बहुत पराक्रमी था। उसका ठीक ढंग से लालन पालन करके कण्व ऋषि ने शकुंतला के साथ में राजा दुष्यंत के वहां पर भेज दिया। अब वो शकुंतला वहां पुत्र को लेकर पहुंची, राजा से कहा कि महाराज मैं तो आपकी रानी हूँ, आपका बेटा है। दुष्यंत ने कहा कि भाई तुम्हारा तो हमारा कभी मिलना ही नहीं हुआ, हम तुमको जानते ही नहीं। ध्यान देवे कैसे विलक्षण राजा हुए। कहा कि न तो ये हमारा बेटा हो सकता है, न तुम कभी हमारी रानी हो सकती हो। इस प्रकार से उसने उसका त्याग किया। इतने में ही आकाशवाणी हुई कि राजन बड़ी भारी गलती कर रहे हो, कण्व ऋषि के आश्रम में तुम इनसे पहली बार मिले थे, ये बेटा भी आपका है, ये स्त्री भी आपकी है। तब दुष्यंत ने उसे भगवान की आज्ञा समझ करके स्वीकार कर लिया। और फिर ये जो भरत था, इसका नाम भरत रखा गया। भरत बड़ा विलक्षण सम्राट हुआ। भरत ने 133 यज्ञ किए, यमुना नदी के किनारे और गंगा नदी के किनारे बड़े विलक्षण यज्ञ करके, और सब दुष्टों को इसने वश में कर लिया था। ऐसा विलक्षण यज्ञ किया, किरात, हूण, यवन, अंध, कंक, खस, शक, इन सब के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। ये सब ब्राह्मणों में श्रद्धा नहीं रखते थे, सबको अपने अधीन कर लिया। इतना होते हुए भी एक बड़ी बात थी, इसके तीन पत्नियां थी भरत के, तीनों पत्नियों के जो बालक हुए थे वो बालक पसंद नहीं थे भरत को। तो उन पत्नियों ने देखा कि भाई ये बालक हमारे पतिदेव को पसंद नहीं है, तो उन बालकों को उन्होंने मार दिया। बालकों को मार देने के कारण से फिर जो है उनका वंश उच्छिन्न हो गया। वंश जब उच्छिन्न हो गया तब फिर विचार किया कि क्या करें। उन्होंने कहा कि अब हम तुमसे तो बालकों को पैदा नहीं करेंगे, तुमने बालकों को मारा क्यों? जगनुस त्याग भयात पुत्रा नानुरूपा इतेरी थे, जब उसका कोई वंश ही नहीं रहा और इन तीनों कन्याओं, इन तीनों रानियों से कोई पुत्र पैदा नहीं किया, तब उन्होंने मरुत देवता की आराधना की। और फिर मरुत देवता की आराधना करने पर भरद्वाज थे, वे भरद्वाज इनके पुत्र के रूप में रहे। कहते हैं कि वे ही वितत के नाम से भी कहलाए और वे भरत के बेटा कहलाए। उसी वितत के मन्यु पैदा हुए और क्षत्रवृत्त पैदा हुए, जय पैदा हुए, महावीर पैदा हुए, नर पैदा हुए, गर्ग पैदा हुए, संकृति पैदा हुए, नर पैदा हुए, ऐसे इनके लड़के पैदा हुए। कहते हैं संकृति के गुरु और रंतिदेव ये दो पैदा हुए। रंतिदेव का यश तो क्या कहूं परीक्षित, रंतिदेव का जब नाम याद आता है तब ऐसा लगता है कि संसार में इससे बढ़कर कोई अतिथि सेवा करने वाला कोई दूसरा हुआ नहीं है। वो रंतिदेव ऐसे विचित्र थे कि इनकी आकाश वृत्ति थी, जैसा तैसा मिल जाए उससे निर्वाह करना। निर्वाह भी कब करना कि पहले दूसरे का निर्वाह करना उसके बाद अपना निर्वाह करना। एक बार की बात है कि उनके पास जो कुछ आया लुटाते गए, लुटाते गए, लुटाते गए, 48 दिन तक भूखे रह गए, कुछ भी उनके पास खाने पीने के लिए नहीं था। 48 दिन तक खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिला, फिर कोई प्रारब्ध से उनको जल भी मिला, घी के पदार्थ भी मिले और उनको दूध से बने हुए खीर वगैरह भी मिली, कुछ खाने को मिला। तो जब वे सब वो सामग्री आए, वो खाने के लिए तैयार हुए, इतने में ही एक ब्राह्मण आए। ब्राह्मण ने आके कहा, रंतिदेव जी बहुत भूखा हूं, बहुत दूर से आया हूं। रंतिदेव ने कहा, आइए आइए ब्राह्मण देवता, पहले आप भोजन कीजिए। देखो शिष्टता से भोजन कराना अलग बात है, इतने दिनों से भूखा रहकर और बड़े प्रेम से भोजन कराना ये बड़ी मुश्किल बात है। ब्राह्मण को भोजन कराया और ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद फिर जो ही खुद भोक्षमाण थे, माने खाने ही वाले थे, इतने में एक शूद्र आ गया। कहने लगा, रंतिदेव जी टुकड़े नहीं मिले खाने को, जैसा भी हो हमको खाने के लिए दे दो। तो विरसलाय हरिस्मरण रंतिदेव जी ने कहा, हो आज तो शूद्र के रूप में भगवान आए हमारे पास, तो भगवान की सेवा समझ के उसको भोजन कराया। जब शूद्र चला गया तो एक दूसरा अतिथि और आया, कुत्तों को लेकर आया और आगे कहा, महाराज हम भी भूखे हैं, ये कुत्ते होते सब भूखे हैं, कोई अन्न हो कोई जल हो तो दीजिए। रंतिदेव ने जो कुछ बचा था वो उनको भी दे दिया, स्वभ्य और स्वपतये विभु कुत्तों को भी दे दिया और कुत्तों का जो मालिक चंडाल था उसको भी दे दिया। फिर बहुत थोड़ी सी सामग्री बची, इतने में एक दूसरा चंडाल और आ गया। सामग्री में क्या केवल जल बचा था, उसने कहा कि मैं बहुत प्यासा हूं जल पिलाई, वो जल भी उनको पिला दिया। जब वो जल पिला दिया उसके बाद रंतिदेव भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, रंतिदेव भगवान से कहने लगे कि नकामये हम गतिमीश्वरात पराम अष्टार्धियुक्ताम पुनर्भवं वा आरतिं प्रपद्ये खिल देह भाजाम अंतःस्थितो ये न भवन्त्य दुःखा। कहने लगे कि हे प्रभु, हम आपसे कोई मुक्ति नहीं चाहते, हम आपसे उत्तम गति नहीं चाहते, हम आपसे कोई स्वर्ग नहीं चाहते, हम आपसे कोई मोक्ष नहीं चाहते, हम संसार से तरना भी नहीं चाहते, हम तो यही चाहते हैं कि जितने प्राणी बिचारे अपने अंतःकरण में दुख पा रहे हैं उनकी जगह अंतःकरण में जाकर मैं बैठकर सारा का सारा दुख अकेला मैं ही पी लूं, दुख मैं ही ले लूं और सबको मैं सुखी बना दूं, ये आप हमको वरदान दीजिए। कितना भूख से कष्ट होता है, कितने प्यास से कष्ट होता है, कितने कितने बीमारियों से कष्ट होता है, कितने कितने परिवार में कलह होते हैं उनसे कष्ट होता है, कितना कितना लोगों का अज्ञान से कष्ट होता है, ये सारा का सारा कष्ट मुझे दे दो और लोगों को आप सुखी बना दो। इस प्रकार से वे भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। इतने में ही भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर तीनों के तीनों रंतिदेव के सामने उपस्थित हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान। भगवान वासुदेव के रूप में ऐसी भक्ति देखी, विष्णु भगवान वगैरह सब प्रकट हो गए, सबको नमस्कार किया और नमस्कार करने के बाद कहा कि रंतिदेव जी, आपने तो दर्शन के लिए कहा नहीं, हम कोई दर्शन देने के लिए नहीं आए, तुम्हारा दर्शन करने के लिए आए। रंतिदेव ने भगवान की स्तुति की और उससे अदृश्य हो गए। सर्वे नारायण परायणा, रंतिदेव के जितने आगे वंश में हुए सब भगवान नारायण के परायण रहे। कहते हैं उसी वितत के वंश में जो गर्ग हुआ उससे शनि हुआ, उससे गार्गी हुए जिससे गार्गी ब्राह्मण भी हुए, इन्हीं वंश में आगे जाकर के हस्ती हुए जिससे हस्तिनापुर हुआ है। कहते हैं हस्ती के तीन पुत्र वे अजमीड, द्विमीड और पुरुमीड। कहते हैं अजमीड का बहुत लंबा चौड़ा वंश है, बड़े अच्छे अच्छे इसमें राजा हुए हैं और द्विमीड के भी अच्छे अच्छे संतानें हुई है। कहते हैं कि फिर आगे अजमीड के दो पत्नियां थी, पहले पत्नी से तो बृहत्काय वगैरह पैदा हुए और दूसरी नलनी नाम की जो पत्नी थी उसे नील हुए, नील से शांति हुए, उसे यवी उससे सुशांति हुए, उस वंश में आगे जाकर भर्म्याश्व हुए। देखो भर्म्याश्व के पांच लड़का थे, यविनार, बृहदिशु, काम्पिल्य और इशु और संजय, ये पांच लड़का हुए थे, ये सब मिलके भर्म्याश्व कहलाए। तो कहते हैं कि इनका नाम पांचाल हुआ, इनका कि हमको पांच देश पर्याप्त हैं तो ये पांचाल देश कहलाए जहां पर ये रहे। कहते हैं ये भर्म्याश्व है, इनसे मुदगल पैदा हुए थे पांच। तो कहते हैं वो मुदगलाद ब्रह्म निर्वृत्तम, उनका जो मुदगल लड़का था उससे कहते हैं कि ब्राह्मण भी पैदा हुए जो मौदगल्य ब्राह्मण कहलाते हैं। इसी मुदगल से देवोदास और अहिल्या पैदा हुई, अहिल्या का विवाह गौतम के साथ हुआ जिससे शतानंद जी हुए, शतानंद के सत्यद्रिति हुए, सत्यद्रिति के शरद्वान हुए। कहते हैं शरद्वान ने उर्वशी को देखा, इस कारण से उनके एक कन्या हुई और एक कुमार पैदा हुए। जो कन्या हुई वो तो कृपी कहलाई और जो पुरुष पैदा हुआ वो कृपाचार्य कहलाए। इस प्रकार से ये बड़ा पवित्र अहिल्या का वंश है। देवोदास का मित्रेयु पैदा हुए, मित्रेयु के चवन, चवन के सुदास, इस प्रकार से इस वंश में आगे जाकर के पृषद पैदा हुए, पृषद के फिर द्रुपद पैदा हुए, द्रुपद के फिर द्रौपदी पैदा हुई और धृष्टद्युम्न आदि और भी द्रुपद के बेटा पैदा हुए थे। धृष्टद्युम्न से धृष्टकेतु हुए और ये सब पांचाल कहलाए। यो अजमीड सुतई अन्य, कहते हैं अजमीड का एक दूसरा लड़का था रिक्ष, उसके बाद संवरण, संवरण का विवाह तप्ती नाम की कन्या, सूर्य कन्या से हुआ, तो विवस्वान की कन्या से हुआ जो पहले बता दिया है। कहते हैं इसी से ही फिर कुरु पैदा हुए, ये वही कुरु है जिनके कारण से कौरव वंश पैदा हुआ है। कुरु के परीक्षित सुधनु, जन्नु, निषदास्व ये पैदा हुए। कहते हैं इस वंश में आगे जाकर के बड़े अच्छे अच्छे राजा लोग हुए। इस वंश में एक बृहद्रथ भी हुए, बृहद्रथ के कुशाग्र हुए, उसके ऋषभ हुए। कहते हैं उसमें जाकर के एक पुष्पवान हुए, उससे जहु हुए। कहते हैं उसकी दूसरी एक स्त्री और थी जिससे दो टुकड़े पैदा हुए, बृहद्रथ के दूसरी स्त्री से एक लड़का पैदा हुआ जिसके दो टुकड़े हो गए थे, फिर दोनों को जोड़ दिया, फिर जरासंध पैदा हुआ था। आप परीक्षित के विषय में बताते हैं, ये कुरुवंश का परीक्षित है, ये सुनने वाला परीक्षित नहीं है, तो ये भी कुरुवंशी, परंतु ये कुरु का जो साक्षात बेटा परीक्षित हुआ उसके विषय में बताते हैं, उसके कोई लड़का नहीं था। जन्नु का बेटा सुरथ हुआ, सुरथ के विदुरथ हुआ और उसी वंश में आगे जाकर के शंतनु हुए। देवापी और शंतनु ये दोनों के दोनों बाल्हिक के लड़का थे, देवापी बड़े थे और शंतनु छोटे थे। देवापी ने पिता का राज्य छोड़ दिया तो शंतनु राजा बन गए। शंतनु में इतनी बड़ी विचित्र बात थी कि जिस किसी का भी स्पर्श करते तो वो जवान हो जाती थी, चीज नई हो जाती थी। एक बार इसी शंतनु की बात है कि ये शंतनु गए गंगा जी के किनारे, तो गंगा जी के किनारे गए तो दासराज की कन्या थी, उस कन्या को उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो ये शंतनु से फिर आगे चित्रांगद और विचित्र वीर्य लड़का पैदा हुए थे। एक बात और भी थी कि संतनु जिस समय में शासन करते थे तो बरसात नहीं होती थी। विचार किया कि बरसात क्यों नहीं हो रही है, तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज आपने बड़े भाई का राज्य था वो बड़े भाई के त्याग के बिना आपने ले लिया, और बड़े भाई का विवाह भी आपने नहीं हो, बड़े भाई से पहले आपने विवाह करा लिया, इसलिए पहले बड़े भाई को आप राज्य दे, वो राज्य छोड़ देवे तब आप ले हो, तब आपके राज्य में धर्म होगा। तो देवापी ने संतु ने कहा कि भाई ठीक बात है। इधर कई चतुर ब्राह्मण थे वो पहले ही देवापी के पास चले गए और देवापी से कहा कि क्यों राज्य के चक्र में पड़ते हो, आपके पास संतनु बुलाने के लिए भेजे तो आप कह देना मैंने तो राज्य छोड़ दिया, आपके पास में संतनु कहेगा कि आपका विवाह हो जाए तो आप कह देना हमको विवाह कराना ही नहीं है, क्या अच्छी बात है। अब वे संतनु के द्वारा भेजे हुए दूसरे ब्राह्मण वगैरह आए, देवापी ने कहा भी देखो हमने राज्य छोड़ दिया और शादी विवाह हमको कराना नहीं है, जब निषेध कर दिया तब देवापी तो कलाप ग्राम में चले गए। जैसे सूर्य वंश में मरु चले गए थे कलाप ग्राम में, ऐसे ही चंद्रवंश में देवापी कलाप ग्राम में आज भी स्थित है। जिस समय में चंद्रवंश नष्ट होगा तो ये देवापी ही सारे वंश को चलाएंगे। अब संतनु के दो बेटा हुए चित्रांगद और विचित्रवीर। कहते हैं चित्रांगद था, उसकी मृत्यु तो चित्रांगद नाम के गंधर्व से हो गई, और यश्याम इसी दासराज की कन्या से भगवान की साक्षात कला है वेदव्यास जी, उन्होंने भी जन्म लिया है पराशर के कारण से। इनसे हमने ये भागवत सुना है और यही भागवत भैया हम सब लोगों को आनंदित कर रही है। मह्यम पुत्राय शांताय, कई प्रकार से उन्हें शास्त्रों का निर्माण किया है, वेदों का विभाग किया है। पहल आदि और शिष्य उनको तो उन्होंने तरह तरह के शास्त्र के ज्ञान दिए, लेकिन देखो परीक्षित हमारे पिता ने भागवत तो हमको ही दिया है। और इधर जो विचित्र वीर्य था उसका विवाह हुआ काशीराज की पुत्री के साथ में, अंबा अंबालिका के साथ में। इन दोनों में इतना ज्यादा वो आसक्त हो गया था कि उनके कोई संतान नहीं हुई और वो मर गया। अब अंबा अंबालिका के कोई संतान नहीं थी तो सत्यवती के कहने से इन्होंने वेदव्यास जी महाराज ने अपने दिव्य शक्ति के प्रभाव से तीन पुत्र पैदा किए, धृतराष्ट्र और पांडु और एक विदुर। इस प्रकार से तीन पुत्र हुए। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी के साथ हुआ जिससे 100 बेटा पैदा हुए। पांडु के दो स्त्रियां थी, एक का नाम कुंती और एक का नाम माद्री। कुंती के तीन पुत्र पैदा हुए, धर्मराज से, वायु से और इंद्र से, या युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये तीन पैदा हुए। और माद्री के नकुल और सहदेव के आह्वान के कारण, नकुल और सहदेव ये हुए अश्विनी कुमारों के आह्वान के कारण। इन पांचों का विवाह द्रौपदी के साथ हुआ, द्रौपदी के फिर पांच बेटा हुए। और इसके अलावा भी युधिष्ठिर के प्रतिबंधी सुतसेन के और वृकोदर सुतसेन के बेटा हुए, वृकोदर के बेटा सुतसेन हुए, अर्जुन के सुतकीर्ति हुए, नकुल के शतानीक हुए, सहदेव के सुतकर्मा हुए। इस प्रकार से इनके संतानें हुई है। सुभद्रा का अर्जुन के साथ विवाह हुआ तो उससे अभिमन्यु पैदा हुए, अभिमन्यु से परीक्षित आप पैदा हुए हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी कि आप गर्भ में मरे नहीं, अन्यथा अश्वत्थामा ने तो आपको मार ही दिया था ब्रह्मास्त्र से। आपके बेटा यहाँ पर बैठे हुए हैं ही, आपके बाद में बड़ा भारी ये यज्ञ करेंगे जन्मेजय, जिसमें सर्पों का आह्वान कर लेंगे, लेकिन फिर भी आगे जाकर ऋषियों के मना करने पर उस यज्ञ को वे रोक देंगे। फिर आपके बेटा ये पोता पड़पोता इन सब का वर्णन सुनाते हैं कि अंत में क्षेमक नाम का एक राजा होगा, ये कुरुवंश का अंतिम राजा होगा। अब हम तुमको मगध देश के राजाओं के विषय में बताते हैं। ये कुरुवंश का वर्णन है, ये चला है जन्नू से चला है। और अब मगध देश के विषय में हम तुमको सुनाते हैं कि वहां पर एक सहदेव नाम का राजा होगा, उसके फिर युतायु और पैदा कई होंगे, इनके आगे एक से एक रिपुंजय नाम का अंतिम इनके लड़का होगा। अब ययाति का जो अनु है उस अनु के सभानर है, चक्षु है, परोक्ष है, ये लड़का पैदा होंगे। इसी में रोमपाद होंगे, रोमपाद की और दशरथ जी की बड़ी मित्रता रहेगी। दशरथ जी की कन्या होगी शांता, वो रोमपाद को गोद दे देंगे। फिर रोमपाद अपनी कन्या शांता का विवाह वे ऋष्यश्रृंग के नाम ऋष्यश्रृंग ऋषि के साथ कर देंगे। जब रोमपाद के कभी बरसात वगैरह नहीं होगी तो यही ऋष्यश्रृंग जी आकर उनके बरसात वगैरह कराएंगे, और इनके साथ ही कन्या दे देने के कारण से बड़ा भारी रोमपाद को पुण्य मिलेगा, ऐसी ये अनु का वंश सुनाया। अब द्रुयु का वंश है, उसमें बड़े अच्छे अच्छे राजा लोग तुर्वसु वगैरह होंगे। कहते हैं ययाति का सबसे बड़ा बेटा यदु हुआ, इसके विषय में हम तुमको सुनाते हैं। यदुवंश यूं तो भाई बड़े इसमें कैसे विचित्र विचित्र राजा हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि साक्षात परमात्मा नराकृति परमात्मा इस यदुवंश में अवतार लिए हैं, अतः यदुवंश महान पवित्र है। यदुवंश में यदु के सहस्रजित क्रोष्टा नल रिपु ये पैदा हुए हैं। फिर इनका वंश चलाया जिसमें दत्तात्रेय जी के शिष्य सहस्रार्जुन हुए हैं। हम सहस्रार्जुन की पवित्र गाथा को बता नहीं सकते हैं, इतना पवित्र चरित्र था उसका। और यज्ञ में, दान में, तपस्या में, योग में, श्रुत में, माने शास्त्र में, पराक्रम में, किसी से भी वो कम नहीं था। और कहते हैं कि उसने 85,000 वर्ष तक बिना किसी प्रकार से बाधा के उसने शासन किया है। और अनिष्ट वित्त स्मरण बुबुझे अक्षय षट वसु, कहते हैं तरह तरह के भोग पदार्थ इसने भोगे हैं। और उसके पास खूब धन था, खूब ऐश्वर्य था, बहुत बड़ा राजा हुआ ये। उसके फिर 5 बेटा थे, वे भी ऐसे ही हुए जो परशुराम जी के द्वारा आगे मारे गए, फिर भी उनके संतानें तो चली ही है। इस वंश में आगे जाकर के एक ज्यामद नाम का एक राजा हुआ। कहते हैं ज्यामद नाम का राजा हुआ, उसके सेव्या नाम की एक स्त्री थी। एक बार ज्यामद युद्ध करने के लिए गया, ध्यान से सुनने हो, युद्ध करने के लिए गया तो वहां के राजा की कन्या को अपने रथ में बैठा करके ले आया। अब उसके कोई लड़का था नहीं, और जब स्त्री ने देखा कि रथ के ऊपर किसी स्त्री को लेकर के आया है, तो वो स्त्री बहुत नाराज हो गई ज्यामद पर, पतिदेव पर नाराज हो गई कि मेरी बैठने की जगह आप दूसरे को क्यों लेके आए हो। क्या भाई ये दूसरा नहीं तो कौन है, ये हमारे होने वाले बेटे की कन्या है, बेटे की स्त्री है, हमारे बेटा तो हुआ ही नहीं, हुआ नहीं तो क्या हुआ, हमने कह दिया ना होगा तो वो होकर के ही रहेगा। तब उस ज्यामद के आगे जाकर लड़का हुआ, और उस लड़के के साथ में फिर उस स्त्री का विवाह हुआ। कहते हैं वो लड़का और नहीं, विदर्भ भी उसका नाम था, विदर्भ के साथ में उस स्त्री का विवाह कर दिया। इस प्रकार के राजा थे, तो भविष्य की बात भी पहले से ही कह लेते थे और उसके वो बात पूरी होती थी। कहते हैं इस प्रकार से ये राजाओं का वंश है। कहते हैं इस वंश में सात्वत हुए, सात्वत के फिर भजमान, भजी, दिव्य, वृष्णि, देवावृत और अंधक ये पैदा हुए हैं। और सात्वत के फिर 7 बेटा हुए। अब इन्हीं के ही वंश में सब कुछ समलो, जितने यदुवंशी आए हैं सब इन्हीं में ही आए हैं। वृष्णि के हुए हैं, देवावृत के हुए हैं, अंधक के हुए हैं, भजी के हुए हैं, दिव्य के हुए हैं, भजमान के हुए हैं, ये अक्रूर जी वगैरह सब इन्हीं के अंदर ही हुए हैं। इन सब के अंदर ही स्वयं वसुदेव जी महाराज भी हुए हैं। अरे वसुदेव जी के विषय में हम आपको क्या बतावें जी, वसुदेव जी का जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज चुकी थी, क्योंकि ये वही वसुदेव जी हैं जिनके यहाँ भगवान अवतार लेने वाले हैं। वसुदेव जी के साथ में वसुदेव जी तो वही, वसुदेव जी के बहने भी थी, प्रथा है, श्रुतदेवा है, श्रुतकीर्ति है, श्रुतश्रवा है, राजादि देवी, ये 5 बहने थी वसुदेव जी की। तो कहते हैं कि कुंते सख्यु पिता सूरो यह पुत्र से प्रथा मदात, यह जो ये थी कुंती, कहते हैं कुंती के जो पिता थे उनकी मित्रता थी कुंती भोज के साथ में, तो उन्होंने अपनी कन्या उनको गोद दे दी, उन्होंने उस कन्या का पालन पोषण किया। एक बार की बात है कि वहां कुंती भोज के यहाँ दुर्वासा ऋषि आए, दुर्वासा किसी की सेवा से इतने संतुष्ट नहीं होते, वो आज बच्ची कुंती की सेवा से बहुत प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के दुर्वासा ने कहा कि देखो तुम जिस देवता का स्मरण करोगी वो देवता आपके पास आ जाएंगे, ऐसी विद्या दे दी। दुर्वासा ऋषि चले गए। अब देखो छोटे बच्चों को कोई रुपया दे दे, पैसा दे दे, तो भाई अब बच्चे न जाने क्या करे, बच्चों को सोच समझ के देना चाहिए। कुंती छोटी सी थी, उनको वरदान दे दिया, तो अब बच्ची के मन में आया कि देखें हमारे ऋषि ने वरदान दिया, इसकी परीक्षा करें। तब उन्होंने परीक्षा करके देखा और तो कोई दिखे नहीं, सूर्य भगवान तो साक्षात दिखते ही है। सूर्य भगवान का आह्वान किया, सूर्य भगवान आ गए। सूर्य भगवान आए तो हाथ जोड़ के डर गई, बोले सूर्य भगवान बोले बोलो भाई कैसे बुलाया हमको, तो जा हमने तो केवल परीक्षा करने के लिए बुलाया। कि भाई ऋषि के वचन परीक्षा के लायक नहीं होते हैं, ऋषि के वचन श्रद्धा करने के लायक होते हैं। परीक्षा नहीं करनी चाहिए, श्रद्धा करनी चाहिए। अब देखो तुमने हमको बुला लिया, हमारा आना तो व्यर्थ तो होगा नहीं, चलो हमारे से तुम्हारे एक बेटा होगा। घबरा गई वो कि महाराज मैं कुमारी हूं, मेरे बेटा कि कुछ भी हो तुम्हारे बेटा होगा, उससे तुम्हारा यश बढ़ेगा, तुम्हारी कीर्ति फैलेगी, उस बेटे से तुम्हारा कभी भी अपयश होने वाला नहीं है। और सच बात तो यह है कि वो तुम्हारे कान से बेटा पैदा होगा। तो कहते हैं अच्छी बात है। अब वो बेचारे क्या बोलती, तो वो कान से बेटा पैदा हुआ, उसका नाम कर्ण रखा गया। तो वो बच्ची थी ये कुंती, उन्होंने उस बच्चे को ले जाकर के नदी के अंदर बहा दिया और फिर उसको अधिरथ सूत ने ले लिया और उनका सूत पुत्र कहलाया, था वो कुंती का बेटा। इसी प्रकार से सुतदेवा का भी विवाह हुआ। सुतदेवा का विवाह करुष देश के राजा वृद्ध शर्मा के साथ हुआ, जिससे दंतवक्त्र पैदा हुए। और सुतकीर्ति का विवाह भी हुआ और राजादी देवी का विवाह हुआ जयसेन के साथ, और जिससे दमघोष चेदीराज पैदा हुए, ये पैदा हुए थे। शिशुपाल आदि सब इन्हीं से ही पैदा हुए थे। इस प्रकार से भाई इनका ये वंश है। कहते हैं वसुदेव जी का विवाह पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवकी इन सातों के साथ हुआ था। बल है, गद है, सारण है, दुर्मद है, विपुल है, ध्रुव है, ये सब रोहिणी के पैदा हुए थे। ध्यान से सुनना। और सुभद्र है, भद्रवा है, दुर्मद है, भद्र, ये पौरवी से पैदा हुए। नंद उपनंद कृतसूर ये मदिरा के पैदा हुए। कौशल्या से केशी पैदा हुए और रोचना से हस्तहेम अंगद आदि ये पैदा हुए। इला के उरुवल का आदि पैदा हुए। धृतदेवा के विपृष्ट पैदा हुए और शांति देवात्मजा राजन और शांति देवात्मजा राजन श्रम श्रुति सुतादय श्रम प्रतिश्रुतादय श्रम प्रतिश्रुति आदि ये शांति के लड़का हुए। इस प्रकार के इनका वंश चला है। इस प्रकार से इनके लड़के पैदा हुए हैं और जो देवकी है उससे आठ पैदा हुए, कीर्तिमान सुसेन भद्रसेन रिजु संवर्धन भद्र और संकर्षण और आठवें स्वयं परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण और एक उनके सुभद्रा च महाभागा सुभद्रा और पैदा हुई वसुदेव जी के। ये नौ संतानें हुई देवकी जी के। देखो राजन आप ध्यान सुनना, यहां संकर्षण बता दिए और उधर रोहिणी के बल बलराम जी बता दिए। बलराम जी और संकर्षण एक ही है, नाम में भिन्नता है, आदमी वो एक ही है। इसी के ऊपर आगे परीक्षित प्रश्न करेंगे। यहां सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि देखो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर को यहां इन स्त्री पुरुषों के यहां अवतार लेने की जरूरत क्या है, कोई जरूरत नहीं है। केवल उनके मन में यही है कि धर्म की अभिवृद्धि हो और पाप का नाश होवे और लोग हमारी कथाओं को सुने, कथाओं को सुनकर के अपने पापों को दूर कर ले, पृथ्वी भी बिचारी हल्की हो जाए, लोगों के चित्त को आनंद मिले। इसी प्रकार से कलयुग के अंदर तरह तरह से शोक और चिंताओं से लोगों का जीवन भरा पड़ा है, उन लोगों के मन में प्रेम और शांति का संचार हो, भक्तों को आनंदित करे, इसी कारण से भगवान भाई यहाँ अवतार लेते हैं। और अवतार लेकर के लोगों के कानों के मार्ग से हृदय में जाकर बैठकर उनके जन्म जन्मांतर के जो मैल है उसको कुचर कुचर करके बाहर निकाल करके साफ करते हैं। ये भगवान का अवतार का प्रयोजन है। एक बार भी यदि कोई भगवान की कथा को सुन लेता है तो धुनते कर्म वासना, सारी वासना समाप्त हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि लोगों की रू शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पांच में बहुत आसक्ति हो जाती है। तब भगवान इस रूपासक्ति को मिटाने के लिए बहुत सुंदर रूप बनाकर आते हैं कि अरे संसारियों, संसार का जो तुम रूप देख रहे हो उससे रूप मेरा अच्छा है, तुम अपने रूपासक्ति मुझ में करो। लोग शब्दों में बहुत आसक्त होते हैं तो भगवान अपने शब्द सुना करके आकृष्ट करते हैं, मेरे शब्द और भी सुंदर हैं, मेरा गंध है वो ऐसा गंध तुमको संसार में कहीं पर अच्छा नहीं मिलेगा, मेरा जैसा सुखद स्पर्श तुमको कहीं नहीं मिलेगा और मेरे जैसा रस भी तुमको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध की आसक्ति मिटाने के लिए भगवान सगुण साकार रूप में अवतार लेते हैं। और हे परीक्षित, यस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम नित्योत्सवम न तत्रिपुर दृशिवीर पिबंत्यो नारियो नराश्च मुदिता कुपिता नमी निमेश्च। जिनके मुख कमल को देखते हैं मकराकृति कुंडल ये अपने चमक से जिनके चमक को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, नई नई मकराकृति कुंडल में जिनकी एक विलक्षण आभा पड़ रही है और जो अपने अपने बिल्कुल निश्चल हास्य के द्वारा सबको लुब्ध कर रहे हैं, नर हो चाहे नारी हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो एक बार उनके रूप को देख लेता था उनको एक एक क्षण में नया नया उत्साह और नया नया आनंद मिलता था और भगवान के दर्शनों को करते करते यदि आंखें कभी यूं पलक मारते बंद भी होती थी तो वो निमि के ऊपर कुपित होते थे कि अरे और जगह आंख बंद हो जाए तो कोई हर्जा नहीं है, भगवान का रूप देखते हुए आंखें बंद कभी नहीं होनी चाहिए। वे भगवान पिता के यहां जन्म लिए, ब्रज में जाकर बड़े हुए, सैकड़ों सैकड़ों अपने शत्रुओं का उन्होंने नाश किया, पृथ्वी का भार उन्होंने हल्का किया, कौरवों के और पांडवों के युद्ध के बहाने बहुत बड़ा उन्होंने पृथ्वी का भार हल्का कर दिया, फिर भी उनके मन में था कि अभी भार हल्का नहीं हुआ है। तो फिर अंत में ब्राह्मणों के हिसाब से यदुवंशियों का भी संहार कर दिया और अंत में पृथ्वी पर औरों के लिए तो विजय का शंख बजाए और उद्धव के लिए ज्ञान का शंख बजा करके वे अपने आप में लीन हो गए। दवाए च परम समगात स्वधाम है। इस प्रकार से नौवां स्कंद यहाँ समाप्त होता है, अब दसवां स्कंद प्रारंभ होता है। देखो दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम ये लक्षणम, ये दशम स्कंद है, ये दशम स्कंद सुनने के लिए ही सारी तैयारियां हैं। दशम स्कंद को जरूर सुनना चाहिए, भगवान की बड़ी विचित्र लीलाएं हैं। अब आज तो हम भगवान के प्राकट्य को कहेंगे और कल भगवान के प्राकट्य का महोत्सव होगा। जैसे इतने दिन तक कथा यहाँ सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो जाती थी तो कल कल के लिए कथा 11:30 बजे से होगी और परसों से वापस अपने 8 बजे से यही कथा होगी। तो कल नंदोत्सव होगा, आज जरा बड़ी शांति के साथ हम लोग भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य को देख लेते हैं। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि वाह महाराज, बड़ा सुंदर आपने वंश का विस्तार बताया, चंद्रवंश और सूर्य वंश का बड़ा विशद वर्णन किया। देखो ऐसा वर्णन नहीं किया था परीक्षित जी के सामने सुखदेव जी ने, उन्होंने सूर्यवंश और चंद्रवंश के लिए कहा कि मैंने सूर्यवंश और चंद्रवंश बताया। परीक्षित कह रहे हैं कि आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश को सुनाया है, ये उल्टा करके क्यों बोलते हैं कि स्वयं ये चंद्रवंश में और इनके परम आराध्य भगवान श्री कृष्ण भी चंद्रवंश में। सच पूछा जाए तो इनको चंद्रवंश से बहुत लगाव था, और दूसरे शब्दों में कि दशम स्कंद के निकट में तो चंद्रवंशी है, उससे पहले सूर्यवंश है। इस प्रकार से सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनी है। ध्यान सुने, ये अब भगवान का चरित्र चल रहा है, संतों का चरित्र सुनते हैं, भक्तों का चरित्र सुनते हैं, तब भगवान के चरित्र को सुनने का हमको अधिकार मिलता है। और पहले हमने भगवान का चरित्र सुना, तो भगवान का चरित्र सुनते हैं तो संतों का चरित्र सुनने के हम अधिकारी होते हैं। एक दूसरे का चरित्र सुने बिना एक दूसरे की बात समझ में नहीं आती है, परंतु और अवतारों को तो बहुत संक्षिप्त सुना है। भगवान श्री कृष्ण का बहुत लंबा चौड़ा विस्तार पूर्वक लीला वर्णन यहाँ मिलेगा, इसलिए पहले नवम स्कंद से भक्तों का चरित्र सुना करके हमारे हृदय की सारी गंदगी को दूर किया गया है। और अब सुखदेव जी महाराज अब भगवान की पवित्र गाथा में हम लोगों को ले जा रहे हैं। कहते हैं महाराज, यदुवंश का भी आपने वर्णन किया, भगवान विष्णु यहाँ श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिए थे, बड़ा पवित्र ये वंश है। महाराज आप तो इस कथा को कहते रहो, जब कोई किसी प्रकार की कामना न रख करके केवल भगवान के अंदर अपना मन लगाते हुए कानों को और मन को आनंदित करने वाली इन कथाओं को कहते हैं, तो श्रोताओं में ऐसी किसकी ताकत है कि जो दशम स्कंद की कथा चले और वो उठ करके चला जाए? किसी की भी ताकत नहीं है। कुमान विराजित बिना पशुनाथ, कोई कोई जीव हत्यारा होगा, पापी होगा, वही दशम स्कंद की कथा में उठेगा, नहीं तो हिम्मत नहीं उठने की, वो बैठा ही रहेगा। इसलिए आप भगवान की विशद व्याख्या सुनाओ। पिता महामे समरे मरंजयर देव व्रताद्या तिरथैस्ति मंगलैः। महाराज वो कौरवों का और पांडवों का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में महाराज इन पांडवों को, हम लोगों को जो विजय मिली थी, माने हमारे वंशजों को जो विजय मिली थी, वो विजय हमारे पूर्वजों की ताकत से नहीं मिली थी, केवल एक कृष्ण की कृपा से मिली थी। कौरव रूपी सेना का इतना लंबा चौड़ा सागर है, उस सागर को पार कर लिया उन्होंने गोखुर के समान, केवल कृष्ण की कृपा का फल है। मैं क्यों दूसरे की बात करूं, अपनी व्यक्तिगत बात करूं गुरुवर, कि मैं अश्वत्थामा के अस्त्र से अपने माता के गर्भ में मैं समाप्त ही हो चुका था, लेकिन सुदर्शन चक्र लेकर के जो मेरे सामने आकर रक्षा के लिए खड़े हो गए, तो मानो उन्होंने संसार मात्र को चुनौती दे दी कि जिसकी रक्षा मैं कर सकता हूं उसको संसार में कोई नहीं मार सकता है। मातुश्च मेय शरणं गताया, जब मेरी माँ उनकी शरण में चली गई तो बड़े प्रेम से उन्होंने हमारी रक्षा की थी। ऐसे भगवान के आप पराक्रम को कहिए, वे माया से मनुष्य बने। ओहो, एक तो वो यूं ही सुंदर है, अपने आप में जहां है वो भी सुंदर है, फिर वे यहां संसार में सुंदर होकर के आवे और फिर सुंदर सुंदर लीला करें, कितनी सुंदरता वे बिखेरते होंगे ये वे ही जाने। हमको भगवान श्री कृष्ण की पावन गाथाओं को कहो। एक आपने बात कही कि ये बलराम जी रोहिणी के बेटा थे और फिर देवकी के बेटा गिनाने लगे तो कह दिए कि ये बलराम जी देवकी के बेटा थे। तो महाराज, कोई आदमी एक ही शरीर से दो माताओं का बेटा कैसे हो सकता है? एक जगह जन्म लेवे, फिर शरीर चला जाए, फिर दूसरी माता के पेट में आवे, ये तो बात है। एक शरीर से दो माताओं से कैसे निकले, ये हमारी समझ में नहीं आया। आपने कहा कि जन्म तो लिया यहां पिताजी के यहां वसुदेव जी के यहां, और बढ़े लंबे चौड़े हुए, आपने पराक्रम दिखाए नंद बाबा के यहां, तो ये ब्रज में चले गए। ये भगवान की लीलाओं का क्या तात्पर्य है महाराज? इनके बचपन से ही बड़ी विचित्रता है। देखो, भगवान टेढ़े रहते हैं, जन्मे तब से टेढ़ापन किया इन्होंने, तरह तरह से लीलाएं की, बड़े टेढ़े हैं ये। इनकी लीला समझना बड़ी मुश्किल है, बड़ी टेढ़ी लीला है। इसलिए हे सुखदेव जी महाराज, कोई आप जैसे सामर्थ्यवान ही इन लीलाओं को सीधा सीधा कहकर के समझा सकते हो, नहीं तो इस लीला को समझना बड़ा मुश्किल है। वक्तु महर्षि सर्वज्ञ सद्धानाय विस्तृतम। आप ये चिंता करोगे कि भाई समय तो बहुत हो गया, आप कथा कैसे कहे? महाराज, इस समय में जो समय की चिंता करेंगे वे तो महाराज इस कथा के रस को समझे ही नहीं है। बहुत भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, ऐसी आप चिंता नहीं करना। इस समय में आप जो कृष्ण कथा अमृत कह रहे हैं उससे हमारे जन्म जन्मांतर की भूख मिट रही है। महाराज, इस भूख की चिंता कौन करेगा? कितने जन्मों की भूख है हमारी, वो भूख हमारी मिट रही, बड़ा आनंद आ रहा है। आप कृष्ण कथा को विस्तार से कहो। सूत जी महाराज कहते हैं, जब राजा परीक्षित इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की कथा को पूछने के लिए बहुत आनंद मग्न होकर प्रश्न किए, तो व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज, कलयुग का कलमश धोने में सामर्थ्य रखने वाला श्री कृष्ण चरित्र है उसको कहने के लिए तैयार हुए। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत निर्मल है। कितने श्रेष्ठ भक्तों का चरित्र सुनकर के आए हो तुम, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत निर्मल है। भगवान वासुदेव की कथा सुनने में रुचि पैदा हो जाए, समझना चाहिए कि भगवान वासुदेव की कोई अतिशय कृपा हुई है। बड़ी सुंदर बात है, तुम्हारी कथा में ऐसी निष्ठा है। देखो राजन, भगवान की कथा है वो तीनों को, तीन लोगों, तीन आदमियों को पवित्र करती है। एक तो वो कि जो इस कथा के विषय में प्रश्न करते हैं, एक वो कि जो इस कथा को सुनते हैं, और एक वो कि जो इस कथा को कहते हैं। कहने वाले, सुनने वाले और पूछने वाले, तीनों के तीनों भाई पवित्र हो जाते हैं। ऐसी पवित्र कथा है। तो भाई, तुम बहुत सावधानी से इस कथा को सुनना परीक्षित। जिस उत्साह से प्रश्न किया है, इसी उत्साह से मैं आपको ये कथा सुनाता हूं। देखो, इस पृथ्वी के ऊपर बहुत अत्याचार बढ़ गए, पृथ्वी बिचारी दुखी हो गई, तो वह गाय रूप से ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी के पास सारे देवता भी आए और ब्रह्मा सब देवताओं को लेकर के क्षीर सागर के तट पर गए। वहां जाकर जगन्नाथ भगवान की आराधना की। उस समय में आकाशवाणी हुई, उस आकाशवाणी को ब्रह्मा जी ने सुना, अकेले नहीं, और सुनकर के ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, रे सुनो सुनो, अभी अभी मेरे कान में आकाशवाणी हुई है। देखो, कभी कभी ऐसी भी बात होती है कि पास में बहुत से लोग होते हैं, रेडियो चल रहा है, एक आदमी सुन सकता है, बाकी नहीं सुन सकते। एक ऐसा तार आता है जो रेडियो में लगा दो, और एक ऐसा और यंत्र होता है अपने कान में लगा दो, खुद ही सुनेंगे, दूसरे नहीं सुनेंगे। तो जब आज के जमाने में भी ऐसे यंत्र है, तो भगवान के यहाँ तो न जाने कितने यंत्र हैं, कैसी कैसी व्यवस्था है उनकी। वे एक ब्रह्मा जी को सुना रहे हैं, बाकी को नहीं सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी ने वो आकाशवाणी अपने अंदर ही सुन ली और सबको सुनाना चालू किया। अरे सुनो सुनो देवताओं, अभी अभी एक आकाशवाणी हुई मेरे अंदर ही। भगवान को सब पता है कि पृथ्वी पर बहुत पाप बढ़ रहा है, और भगवान ने आज्ञा दी है कि सब देवता, अब आप लोग यदुवंश में जाकर अवतार ले, बहुत जल्दी ही वे यहां स्वयं अवतार लेने वाले हैं। स्वकाल शक्त्या क्षपयश्चरेत भूवि, और वे अपने काल शक्ति के द्वारा इस पृथ्वी का, सारा पृथ्वी का कलमश धो देंगे अवतार लेकर के। वे वसुदेव जी के घर में जन्म लेने वाले हैं, और जनिष्यते तत्प्रियार्थम, ये वहां पर उनके प्रिय के लिए अवतार लेंगे। अब इनके किनके प्रिय के लिए लेंगे? ब्रह्मा जी तो चुप हो गए इतना बोल करके, न जाने भगवान के कौन कौन प्रेमी है, वसुदेव जी प्रेमी है कि नंद बाबा प्रेमी है या ये राक्षस है, गुप्त रूप से इनका भी कोई प्रेम है अथवा गोपियों का प्रेम है अथवा राधा जी का प्रेम है, जिनका भी प्रेम है, नहीं नहीं जितने भी प्रेमी हैं इन सब का प्रिय करने के लिए भगवान वसुदेव जी के यहाँ अवतार लेने वाले हैं। उनका नाम वासुदेव होगा और वे अपनी अनंत नाम की एक कला, उस कला को वो पहले भेजेंगे और उसके बाद वे अवतार लेंगे। भाई आगे क्यों भेजेंगे? देखो कोई भी बड़ा आदमी है अपने आने की व्यवस्था के लिए पहले छोटों को भेजता है, जाकर देखो हमारी वहां व्यवस्था कैसी होगी, तुम देख लो फिर हमारे। ऐसे अनंत कला को, अनंत शक्ति को तो पहले भेजा और स्वयं बाद में आए। और वे ही भगवान अपनी माया को भी यहां पर भेजेंगे जिससे सारा संसार मोहित हो जाया करता है। ऐसी भगवान ने आप लोगों को आज्ञा दी, आप जाओ यदुवंश में जन्म ले। देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए, वहां से भी सब अपने अपने स्थान पर आ गए और जैसी आकाशवाणी हुई उस अनुसार वे यदुकुल में जन्म लेने के लिए तैयार हो गए। इधर मथुरा के अंदर, अरे भाई परीक्षित क्या बतावे, मथुरा इतनी सुंदर जगह है, भगवान हरदम मथुरा में रहते हैं, मथुरा को छोड़ते ही नहीं है। उस मथुरा के अंदर वसुदेव जी महाराज रहते थे। वसुदेव जी का देवकी के साथ विवाह हुआ, जिस दिन विवाह हुआ खूब धूम धमाके के साथ विवाह हुआ। और जब विवाह की सामग्रियों को, दहेज को, सबको सामग्रियों को रथों में ले जाकर रखा गया और वसुदेव को और देवकी को उन दोनों को बैठा दिया रथ में, तब वहां कंस आया। उस देवकी के साथ बहुत प्रेम था अपनी बहन के साथ, उसने वहां सारथी को हटा करके कहा कि नहीं मेरे बहन को ससुराल मैं पहुंचा के आऊंगा। वह स्वयं जाकर रथ में बैठ गया, घोड़ों की लगाम उसने पकड़ ली और घोड़ों को वहां से रवाना किया। कितना दहेज का सामान था वहां, वहां कितने हाथी दिए, कितने घोड़े दिए, कितने रथ दिए, कितने दास दासियां दी, बहुत सा सामान दिए थे, क्योंकि देवक को अपनी बेटी के साथ बहुत प्रेम था। देवक और उग्रसेन दोनों सगे भाई थे, उग्रसेन का बेटा तो कंस था, देवक की बेटी ये देवकी थी। देवकी का और कंस का बहुत प्रेम था, कंस है देवकी से बहुत स्नेह रखता था अपनी बहन के ऊपर। तो उस समय में वो देवकी और वसुदेव जी को लेकर के रवाना हुआ, रवाना होकर के और जो ही वो थोड़े दूर पहुंचा, इतने में ही कंस को सुनाती हुई एक आकाशवाणी कहने लगी, अरे कंस इसी का आठवां गर्भ होगा, वो तुझे मारेगा, तुझे पता नहीं, तू बड़ा मूर्ख है, इसी का आठवां बेटा तेरे को मारने वाला होगा, तू तो इतना प्रेम कर रहा है, इसी का ही पुत्र तुझे मारेगा। ये बात सुनी तो कंस ने देखा कि ओहो आठवां बेटा मुझे मारेगा तो पहले से ही मैं इनको क्यों नहीं मार दूं। तत्काल उसने अपने पास में तलवार थी, तलवार म्यान में से निकाली और निकाल करके वो मारने के लिए तैयार हुआ। तो वसुदेव जी ने कहा, अरे ये क्या करते हो, करते क्या है, आकाशवाणी ने क्या कहा इसका आठवां लड़का मारेगा, हम पहले ही मार देंगे। नहीं नहीं ऐसा मत करो भाई, आप लोगों ये क्या करते हो, मृत्यु से बचने का उपाय किसी को मारना नहीं होता है, मरना तो इस संसार में सबको पड़ेगा, जो पैदा हुआ है उसको मरना पड़ेगा और मर करके अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तुम नहीं देखते कि मनुष्य है वो स्वप्न में नई सृष्टि देखता है, फिर जागता है तो वापस और जगह मिलता है। ऐसे ही उम्र भर में जिस शरीर के साथ प्रेम करता है, मर जाने के बाद कर्मों के फल से नया शरीर मिलेगा। अरे स्वप्न में उसको नया शरीर मिल जाता है और बैठे बैठे आत्मचिंतन करते हो, कोई कल्पना करते हो तो उसमें हमारा नया शरीर बन जाता है। ऐसे ही इस कंस शरीर से तुम मरोगे तो आगे तुमको नया शरीर मिलेगा। तो ये मरने का कोई पिंड छूटने वाला यूं थोड़ा ही है, इसलिए ऐसा पाप मत करो और किसी भी उपाय से तुम अपने बहन को बचाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तरह तरह से समझाने पर भी वो निष्ठुर नहीं माना। तब वसुदेव जी ने एक युक्ति निकाली। वसुदेव जी ने कहा, अच्छी बात है भाई, देखो इसके जो भी लड़का होता रहेगा हम आपको देते रहेंगे, अब तो तुम प्रसन्न हो, पुत्रान समर्पित शेष्या, हम इसके जितने पुत्र पैदा होते रहेंगे तुमको समर्पित करते रहेंगे। इन्हीं से तो भय, देवकी से तुम्हें भय है नहीं, मेरे से कोई भय है नहीं, भय है तो लड़कों से, लड़का हम तुमको दे देंगे। क्या अच्छी बात, राजीपा हो गया उनका और कंस ने उनको छोड़ दिया। वसुदेव जी महाराज अपने घर में आ गए। थोड़े दिनों के बाद में उनके पहला लड़का हुआ, ले जाकर कंस को दे दिया। कंस ने देखा कि भाई ये तो झूठ नहीं बोलने वाले, वसुदेव जी बड़े सज्जन है, कंस ने कहा नहीं नहीं हमें तो आठवें लड़के से भय है, इसको आप वापस ले जाओ। वसुदेव जी वापस ले आए। इस प्रकार से वसुदेव जी वापस ले आए कंस के कहने पर, और वे अपने घर पर आ गए। और इधर एक बार घूमते घूमते नारायण नारायण करते हुए नारद जी महाराज कंस के पास आए और कंस से कहा, क्यों कंस जी आजकल क्या हालचाल हो रहा है? कि महाराज हालचाल तो आप ही बताओगे, हम तो एक जगह पड़े हैं, आप सब जगह फिरते हैं, आप ही बताओ। ये बताएं क्या? देखो भाई, ये नंद आदि जितने व्रज के अंदर है ना, ये सब के सब ये देवताओं से मिले हुए हैं। मिले हुए नहीं है, इनके भीतर में देवता आकर बैठ गए हैं, इसलिए अब तुमको जो कुछ करना है सो तुमको कर लेना चाहिए। वसुदेव जी को सामान्य पुरुष मत समझना, इनके अंदर कोई और ही शक्ति काम कर रही है। इस प्रकार से उन्होंने कहा और ये भी कहा कि देखो यहां अब भगवान वासुदेव है, भगवान विष्णु है, वो दैत्यों का वध करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। भूमेर भाराय माणानाम दैत्यानां च वधोद्यमम, इन्होंने वध का उद्यम कर लिया है। और तो और क्या बतावे, आप अच्छी तरह से समझ लो कि आप लोगों पर अब बड़ा भारी संकट आने वाला है। ये नारद जी की बात सुनी। नारद जी देखते थे कि जल्दी से जल्दी बाबा ये पाप थोड़ा 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 पाप करता है तो जीव तो ज्यादा रहेगा, जल्दी पाप कर करा करके जल्दी घड़ा फूट जाए तो ठीक है। इधर कंस ने देखा कि अरे ये यदुवंशी है, तो देवता है, बहुत उनको क्रोध आया। और विष्णु है, वो देवकी के यहां जन्म लेने वाला है, और विष्णु को मार दूंगा तो फिर सबके ऊपर मैं ही बड़ा हो जाऊंगा, अरे मेरी तो बड़ी भारी महिमा हो जाएगी। ऐसे मन ही मन में बहुत बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी बातें समझ करके देवकी को और वसुदेव को कैद कर लिया। कैद करके जो उनका पहला बेटा था उसको मार दिया, और फिर दूसरा बेटा था उसको भी मार दिया। ऐसे वो बेटे के मारने की तैयारी में था। इधर प्रलंब है, बक है, चाणूर है, इन सबको बुला करके कंस ने कहा, देखो जी हमको नारद जी ने कहा, नारद जी झूठ तो बोलते नहीं है, आप लोगों को नंद जी के ब्रज में जाना चाहिए, और जो भी कोई छोटे मोटे बालक हैं जिनको देखो आप, उन सबको पूरा करते चले जाओ, इन्हीं के अंदर ही कहीं विष्णु आ जाएगा, इन्हीं में कोई देवता आ जाएंगे। कि अच्छी बात है। इधर वो तैयारी में निकल गए, देवकी के एक मारे दो तीन चार पांच और छह बेटों को मार दिया। अब सातवां जो भगवान विष्णु का अनंत तेज था वो देवकी के उदर में आया। जब वो देवकी के पेट में सातवां गर्भ था, वो भगवान की अनंत शक्ति से संपन्न, उस समय में भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया। योग माया को बुलाकर कहा, देखो योग माए, तुम आप ब्रज में जाओ, ब्रज है बड़ा प्रेमियों का स्थल है, वहां जाओगे तो वहां पर जिसका मुंह उदासी से है, जिसका मुंह लटक रहा है, जो बहुत ही ज्यादा खिन्न है, ब्रज में जाते ही जैसे किसी सूखे जल में पानी देने से वो वृक्ष हरा भरा हो जाता है, ऐसे वहां जाने पर सब हरे भरे हो जाते हैं, उनके दिल दिमाग हरदम तर रहते हैं, इसलिए तुम अब जाओ, तुम जाओ ब्रज में जाओ। माँ माए, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, सदा हमारी आज्ञा का पालन किया है, उस आज्ञा पालन का ये पुरस्कार है कि तुम ब्रज में जाओ और वहां हमारे पवित्र जो प्रेमी लोग हैं उनके दर्शन करो, गोप गोभीर अलंकृतम, और गोपियों के दर्शन करो। वहीं पर रोहिणी भी है, वहीं पर वसुदेव जी है, वहीं पर नंद जी है, इन सब के दर्शन करो। और अन्याश्च कंस संविग्ना विवरेशु वसंती, बहुत से ऐसे हैं जो कंस से डरे हुए बिचारे इधर उधर पहाड़ों में और में कहीं छिपे हुए हैं, इन सब का मुझे कल्याण करना है, इन सब को आनंदित करना है, और व्रज के अंदर मुझे ऐसी लीला करनी है, ऐसी लीला करनी है कि व्रज के नाम से ही लोगों का मन है वो प्रसन्न हो जाए।